بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تو کل بتا رہے تھے خوف اور رجا، اس کے بارے میں تھا. تو خوف کے فرمایا جو انسان بھی نیک عمل کرے گا اس کو تین فائدہ ہوگا. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امید دیں گے، چین اور سکون دیں گے. دوسرا فائدہ تعلق مع اللہ پیدا ہوگا. اب تیسرا فائدہ تھا، تیسرا نقد فائدہ کہ حضرت والا نے یہاں ذکر نہیں فرمایا لیکن دوسری جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، اور خود قرآن کریم نے اس فائدے کا ذکر کیا ہے. وہ یہ کہ نیک عمل انسان کے قلب کو اطمینان، سکون اور طمانینت عطا کرتا ہے. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وہی چین اور سکون کا. تو یہاں پر امید ایک فائدہ، اللہ کا تعلق دوسرا فائدہ، اور تمانت اور سکون یہ تیسرا فائدہ بتایا الگ الگ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اطمینان اور سکون ایسی متاع ہے، ایسی چیز ہے کہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی. جی، تو یہ وہ انسان کے قلب کو سکون اور طمانینت عطا کرتی ہے. نیک اعمال کی خاصیت ہے کہ انسان کے قلب کو چین اور سکون دیتے، اور طمانینت وہ دولت ہے کہ شاید دنیا میں اس کے برابر کوئی دولت نہ ہو. ایک آدمی کے پاس مال و دولت ہے، کوٹھی ہے، بنگلے ہے، نوکر چاکر ہے، لیکن دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہے. وہی بات جو پہلے دن بتائی تھی، تو اس کے لیے سب دولتیں بیکار ہیں. لیکن ایک دوسرا شخص ہے، اس کے پاس مٹی کا گھر ہے، جھونپڑی ہے، لیکن دل میں طمانت اور سکون ہے، تو یہ دوسرا شخص پہلے والے شخص سے ہزار درجہ بہتر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں، اپنے عبادت میں سکون کی خاصیت رکھی ہے. ایک نیک عمل کا فائدہ ہے جو اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے. جی، پھر اس نیک عمل کا چوتھا فائدہ کہ ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کا ذریعہ بنتا ہے. جب تم ایک نیک عمل کرو گے تو وہ تمہیں دوسرے نیک عمل کی طرف کھینچے گا. گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف کھینچتا ہے. اسی طرح جب تم نے ایک نیک عمل کیا تو تمہیں دوسرے نیک عمل کی توفیق ہو جائے گی. بہرحال نیک عمل کے یہ چار نقد فائدے ہیں جو انسان کو دنیا ہی میں مل جاتے ہیں. پھر گناہوں کے نقصانات کیا؟ جیسے نیک عمل کے فائدے بتائے تو گناہوں کے نقصانات بھی ہیں. آگے فرمائے کہ اسی طرح اعمال سیئہ، برے اعمال کا ایک نقصان ادھار ہے اور ایک نقصان نقد ہے. یعنی گناہوں کا ایک نتیجہ تو ادھار ہے جو آخرت میں ملے گا، وہ ہے عذاب جہنم. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. اور گناہوں کا نقد نتیجہ وحشت، ظلمت، بے چینی ہے. جو گناہوں کو لازم ہے، یعنی گناہوں کے اندر بے چینی اور ظلمت اللہ تعالی نے رکھ دی ہے، کسی کا مذاق ہی بگڑ جائے اور ذائقہ ہی خراب ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ظلمت ہے. کسی کا منہ خراب ہو جائے تو اس کو ٹیسٹ پتہ نہیں چلتا. تو ایسے ہی کسی کو ظلمت کا پتہ نہیں چلتا، بے چینی ہے، پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس کو مزیدار سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ظلمت اور بے چینی ہے، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کی لذت کی ایک بہترین مثال بیان فرمائی کہ گناہوں کی لذت ایسی ہے جیسے کسی کو خارش کی بیماری ہو تو اس کو کھجانے میں کتنا مزہ آتا ہے، کھجانے میں کتنا مزہ آئے گا. یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ دنیا میں دو ہی چیزیں مزہ ہے، دو ہی چیزوں میں مزہ ہے، या खाज में या राज में, यानी या तो खुजाने में या तो राज और हुकूमत करने में मजा आता है। खुजाने में इतनी लज्जत है कि उसको हुकूमत के साथ मिलाकर जिक्र किया, और वाकईतन जब इंसान को ख़ारिश हो तो खुजाने में इतना मजा आता है कि उसकी कोई हद नहीं, इससे बचना मुश्किल होता है। लेकिन जब खुजाना छोड़ो तो अब उस जगह पर मिर्ची लगनी शुरू हो गई, वो बीमारी और बढ़ गई। फिर दोबारा खुजाया तो फिर मजा आया, लेकिन बीमारी और बढ़ गई। इसी तरह खुजाने के नतीजे में बीमारी बढ़ती चली जाती है। यही मामला गुनाहों का है कि गुनाह करने से लज्जत आती तो है, लेकिन वो लज्जत बिल आखिर जुल्मत और बेचैनी छोड़ जाती है। जी, तो ये चीजें थी। तो अब हजरत फरमाते हैं कि खौफ के दर्जात है। खौफ के क्या है? दर्जात है। एक मलफूज में हजरत थानी रहमतुल्लाह ने निशात फरमाया कि एक खौफ तो बमाना अकली अजाब है, ये तो शर्त ईमान है, और एक दर्जा खौफ का यह है कि तकाजा आसियत के वक्त आयात और अजाब खुदावंदी को याद करके सोच सोच कर गुनाहों से बचा जाए, ये दर्जा फर्ज है। अब खौफ के दर्जात बताते हैं कि कौन सा फर्ज है, कौन सा वाजिब है, कौन सा नफल है। अब वो दर्जात है, पहले तो बताया था खौफ क्या है, और फिर खौफ अकली और तबीई दो बताए। अब ये बताना चाह रहे हैं कि खौफ के क्या दर्जा। तो फरमाया ये खौफ तो बमाना अकली, ये तो शर्त ईमान है, यानी मुझे अजाब का खौफ, अजाब का खौफ होना ये तो ईमान के लिए शर्त है। और एक दर्जा खौफ का ये है कि तकाज़े मासियत के वक्त, गुनाह के वक्त आयात और अजाब खुदाबंदी को याद करके सोच सोच करके गुनाहों से बचा जाए, ये दर्जा फर्ज है। तो खौफ का फर्ज का दर्जा तो हर एक को हासिल करना है। जैसे नमाज फर्ज है, ऐसे खौफ का भी एक दर्जा फर्ज है। अब बताओ ये फराइज हमने कब सीखे हैं? ये नहीं सीखे हमने। ये दर्जा फर्ज है, इसके फुकदान से कुफ्र न होगा, हाँ गुना होगा। अगर ये दर्जा न रहा तो इंसान काफिर तो नहीं होगा, लेकिन गुना होगा। और एक दर्जा खौफ का ये है कि मुराकबात और इश्तगाल से, मशगूली से आयात और वईद और अजमत व जलाल हक को हर दम मुस्तहजर और पेशे नजर रखा जाए, ये दर्जा मुस्तहब है। एक इतना दर्जा जिससे इंसान सोच सोच कर गुनाहों से बच जाए, ये तो फर्ज है। और वो दर्जा, आसान लफ्जों में जो बता रहा हूं, एक वो दर्जा कि हर वक्त उसको अल्लाह याद रहे, जिसको कहते हैं हर वक्त ध्यान रहे वईदों का और अल्लाह ताला की अजमत का, तो फरमाए ये दर्जा मुस्तहब है, ये दर्जा मुस्तहब है। वो दर्जा कौन सा है? जो फर्ज, यानी वो खौफ के वक्त में, यानी अल्लाह ताला के अजाब को सोच सोच कर उस गुनाहों से बच जाए। इतना तो फर्ज है गुनाहों से बच जाए, लेकिन अब अल्लाह ताला के खौफ का इतना इस्तेजार के हर वक्त रहे, ये मुस्तहब है। कि अल्लाह की बड़ाई हर वक्त सामने रहे, अल्लाह का खौफ हर वक्त सामने रहे, ये मुस्तहब है। और सब दर्जात मुक्तसब है, ये सारे दर्जात है मेहनत से मिलेंगे। मुक्तसब यानी मेहनत करने, जो कस्ब से हासिल होते हैं, मेहनत से हासिल होते हैं। और उनसे आगे एक और दर्जा है जो इख्तियार से बाहर है, एक और दर्जा, इसकी आगे और तफसीर आएगी, घबराए नहीं, अभी तो खाली सुनो, ये हजरत का मलफूज है। वो ये कि एक दर्जा वो है जो इख्तियार से बाहर है, वो ये कि आसार आसार खौफ इस कदर गालिब हो जाए, खौफ के आसार इस कदर गालिब हो जाए कि अगर उनको कम करना या भुलाना भी चाहे तो इख्तियार और कुदरत से बाहर हो, ये महज वहबी है। तो देखो, एक दर्जा खौफ का तो शर्ते ईमान है, एक दर्जा खौफ का तो फर्ज है, एक दर्जा खौफ का तो मुस्तहब है, और एक दर्जा जो इख्तियार से बाहर है, यानी खौफ के आसार इस कदर गालिब हो जाए कि अगर उसको भुलाना भी चाहे तो भूले नहीं, तो इख्तियार और कुदरत से बाहर हो जाए। फरमाया ये दर्जा वहाबी है। वहाबी का मतलब ये इंसान मेहनत करके इस दर्जे को हासिल नहीं कर सकता, ये अल्लाह अपने बंदों में से बाज को दे देते हैं, इसको कहते हैं वहाबी। कसबी, देखो लफ्ज आया, फरमाया ये दर्जा तो कसबी है यानी मेहनत से हासिल हो सकते हैं, ये दर्जा वहाबी है यानी वो मेहनत करोगे तो वो मिलेगा नहीं, वो अल्लाह ताला किसी को दे देते हैं। वो कसबी वाले मेहनत करके फिर अल्लाह ताला उसको किसी को आगे बढ़ा देते हैं या किसी को उसी पर स्टॉप कर देते हैं। न समझे हो तो लिख देना, आगे और आएगी तफसीर, लेकिन अभी ये बता रहा था कि वह भी है। वह भी का मतलब अल्लाह देते हैं, ये मेहनत करके उस दर्जे तक जा नहीं सकता, तो जो कैफियत होती है ना वो वह भी होती, इसलिए फरमाया कैफियत महमूद तो है लेकिन मकसूद नहीं। जो अल्लाह ने मकसूद रखा है वो कसबी है, मेहनत करके उस तक जा सकते हो, लेकिन जो कैफियत है वो वह भी होती है, अल्लाह बाजों को देते बाजों को नहीं देते। इख्तियार और कुदरत से बाहर है। जो दर्जात साबिका, पहले जो दर्जात बताए मुक्तसबा के हासिल करने के बाद, मुक्तसबा यानी वो दर्जा जो मेहनत से हासिल करने के बाद महज अताए हक से बाज को हासिल हो जाता है, ये कौन सी वह भी। ऐसा ही इसके मुकाबले में रजा के भी दर्जात, ये खौफ के दर्जा, खौफ और दर्जात, खौफ और रजा के बारे में बात चल रही थी। खौफ और रजा के बारे में तो पहले बताया, खौफ क्या है, रजा क्या है, कैसे हासिल किया जाएगा, अब यह है उसके दर्जात बता रहे, कौन सा दर्जा फर्ज है, कौन सा दर्जा मुस्तहब है, कौन सा दर्जा हासिल कर सकते है। ऐसे ही रजा यानी उम्मीद के भी दर्जात है। उम्मीद का एक दर्जा शर्त ईमान है बमाना एहतमाल नजात, और एक दर्जा फर्ज है, और एक दर्जा मुस्तहब है, और एक दर्जा महज वहा भी है। उम्मीद के अंदर भी ये चार दर्जात है। देखो कितनी एक एक बात खोल के बता। अब अल्लाह का खौफ मतलूब है, अब उसकी तफसीर सुनो, शर्त ईमान कौन सा है, कैसे हासिल होता है। इस छोटी सी इबारत में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खौफ और रजा के सारे दर्जात बयान फरमा दिए। पहले खौफ का दर्जात बयान फरमाया है, पहले खौफ के दर्जात बयान फरमाए, फिर रजा के दर्जात बयान फरमाए। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि एक मोमिन के अंदर ये दोनों चीजें होनी जरूरी है, अल ईमानु बैन अल खौफ वर रजा। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला के अजाब से डरने का जिक्र है, इसलिए डरना मतलूब है। कुरान करीम में है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिहि व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। लिहाजा इंसान इस बात से डरे कि मुझे एक दिन अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है, और क्या करना है, अपने आमाल का जवाब देना है। यह डर मतलूब है, यह शर्ते ईमान है। कितना डर, अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। फरमाया जो इंसान डरता है कि अल्लाह ताला के सामने मुझे खड़ा होना है, अपने आमाल का जवाब देना है, तो यह डर मतलूब है। खौफ का पहला दर्जा शर्ते ईमान है, लेकिन इस डर के दर्जात मुख्तलिफ है। डर और खौफ का एक दर्जा तो वो है जो शर्ते ईमान है। अगर खौफ का ये दर्जा हासिल न हो तो वो आदमी मोमिन ही नहीं बल्कि काफिर है। देखो कैसे कैसे बता दिया, खौफ का यह दर्जा हर एक को होना चाहिए। वो खौफ क्या है जिसके लिए ईमान जरूरी है, कि वो तो उसके बगैर ईमान ही नहीं है। वो खौफ ये है کہ آدمی کے دل میں اس بات کا احتمال ہو کہ شاید مجھے کہیں اللہ تعالی میری بدعملی پر عذاب نہ دے دے. یہ خوف میری بدعملی پر عذاب نہ دے دے اور میرے کسی گناہ اور ناجائز عمل کی بنا پر مجھے مرید غضب نہ بنا لے, یعنی میرے پر غصہ نہ اتار دے. یہ خوف ہونا چاہیے. یا یوں کہا جائے, یا یوں کہا جائے کہ اس بات پر ایمان ہونا کہ اگر کوئی شخص کفر کرے گا تو اس پر اللہ تعالی کا عذاب ہوگا. لہذا خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر میں بھی کفر میں مبتلا ہوا تو مجھے کو بھی عذاب ہوگا. اس بات پر یقین ہونا شرط ایمان ہے. دو طرح سے بتائی, ایک تو بتایا کہ کہیں میری بدعملی پر اللہ تعالی مجھے عذاب نہ دے دے, یہ انسان کے دل میں خوف ہو, اور میرے کسی گناہ پر ناجائز عمل کے بنا پر کہیں اللہ تعالیٰ میرے پر اپنا غضب نہ اتار دے. ایک یہ, اور دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اگر کوئی شخص کفر کرے گا, کوئی انسان اسلام میں سے نکل گیا اور کفر میں چلا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. لہذا خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر میں بھی کفر میں مبتلا ہوا تو مجھ کو بھی عذاب ہوگا. تو اس بات کا اعتقاد شرط ایمان ہے. الحمدللہ ہم جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ اس کو تو اس کا تو ضرور یعنی عقیدہ ہے اور ایمان ہے. یہ خوف ہر ایک میں ہے. جو اعمال نہیں کر رہا ہے اس کے اندر بھی یہ خوف ہے, اسی لیے تو بیچارہ وہ ڈرتا ہے. اس کے اندر بھی تو یہ ایمان تو ہے. اگر یہ خوف بھی چلا گیا تو گویا ایمان ہی نہیں. اگر کسی کو اعتقاد حاصل نہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں. گویا کفر پر عذاب کا ترتب ہونا, کفر پر عذاب کا ترتب ہونا اور یہ احتمال دل میں رہنا کہ کہیں میں مرید عذاب نہ بن جاؤ, یہ احتمال دل میں رہنا شرط ایمان ہے. جی آج یہ تو الحمدللہ اتنا خوف تو ہمارے پاس ہے, لیکن بعضے بیچارے ایسے ہے کہ جن کے پاس یہ خوف بھی نہیں ہے اور مسلمان ہے. ہاں کیا کیا ہو جائے گا, یہ جو لفظ ہوتا ہے نا اس میں کیا کچھ بھی نہیں ہے. تو بیچاروں کا پاس کچھ بھی نہیں ہے خوف, کیونکہ جس کے پاس خوف ہے تو یوں سمجھو اس کے پاس اتنا ایمان ہے. اور جو خوف نہیں تو ایمان ہی گیا. تو فرمایا عذاب نہ بن جاؤ, یہ احتمال دل میں رہنا شرط ایمان ہے. اگر یہ اعتقاد نہیں تو ایمان ہی نہیں. بہرحال یہ خوف کا ادنا درجہ ہے جو مدار ایمان ہے, ایمان کے لیے شرط ہے, ایمان کے لیے ضروری ہے. خوف کا دوسرا درجہ فرض ہے. جی خوف کا دوسرا درجہ حضرت والا نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب دل میں گناہ کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہو یا گناہ کا کوئی موقع سامنے آ جائے, جیسے انسان کا نفس ہے گناہ کرنے کو جی چاہا یا گناہ کے یعنی وہ اسباب آ گئے, موقع آ گیا, تو اس وقت اللہ تعالی کے عذاب سے ڈر کر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا, اللہ تعالی کے عذاب سے ڈر کر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا. مثلا دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں جھوٹ بولوں, اب اس وقت تصور کرنا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے. اس عذاب کا تصور اور استحضار کر کے اپنے آپ کو اس جھوٹ سے بچانا خوف کا یہ درجہ فرض ہے. یہ درجہ فرض ہے. تو ایک تو ایمان کے لیے شرط ہوا تو وہ تو ایمان والا, اب یہ فرائض جب ادا ہوں گے تو اب اس کو گناہ سے بچنا آسان ہوگا, یہ محنت کر کے آئے گا یہ درجہ پر کہ پھر اس کو گناہ سے بچنا آسان ہوگا. خوف کا یہ درجہ فرض ہے. اگر خوف کا یہ درجہ کسی انسان کو حاصل نہ ہو تو وہ کافر تو نہیں ہوگا, کافر تو نہیں ہوگا, لیکن فرض کا تعلق کہلائے گا, فرض کو چھوڑنے والا کہلائے گا. اب دیکھو یہ فرض ایک معلوم ہو گیا, کیا کبھی हमारे ऊपर हमने इसको देखा था कि ये भी फर्ज है, ऐसे कितने फराइज हमसे छूटे हुए हैं। तो फरमाया तारिक कहलाएगा, गुनेगार होगा, गोया कि वो शख्स ऐसा है जैसे उसने फर्ज नमाज छोड़ दी, फर्ज रोजा छोड़ दिया, या मसलन दिल में बदनजरी का तकाजा पैदा हुआ, उस वक्त अपने दिल में बदनजरी के अजाब का इस्तेजार करके उस अजाब से डर कर अपने आप को इस बदनजरी से बचाना फर्ज है। अब अगर उसने उस वक्त अल्लाह ताला के अजाब का इस्तेजार न किया और वो गुनाह कर गुजरा तो वो शख्स फर्ज का छोड़ने वाला हुआ, जैसे फर्ज नमाज फर्ज रोजे का छोड़ने वाला। इसलिए फरमाए फर्ज नमाज का छोड़ने वाले को काफिर नहीं कहेंगे, फर्ज के इनकार करने वाले को तो काफिर कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन फर्ज नमाज छोड़ रहा है तो मुसलमान तो है, वो छोड़ने का उसको अलग गुना है। ऐसे ही ये फर्ज वो है कि इसका उसको काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन गुनेगार जरूर होगा। किसी को दर्जा हासिल नहीं है तो काफिर नहीं कहेंगे, इसको हासिल कर। तो जिस तरीके से हम मेहनत करके फराइज पर आ गए हैं, नमाज वगैरह पढ़ने शुरू कर दिया, पहले नमाज भी नहीं पढ़ते थे, अब हमें मेहनत करना है कि मेहनत करके करते ऐसा खौफ हमारे दिल में बैठ जाए कि हम गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाए। और गुनाह हमने आपको बताया था कि जो गुनाह है, गिबत है, हसद है, किब्र है, उसकी सारी तफसीर ये पूरे 4-6 महीने से चल रही थी, वो सारे के सारे जो थे वो क्या थे, वो गुनाह थे। तो इतना खौफ हो कि हम हसद से बच जाए, इतना खौफ हो कि हम बदनजरी से बच जाए, हम तकबुर से बच जाए, बदगुमानी से बच जाए, ये सारा खौफ फर्ज के दर्जे में कहलाना चाहिए, क्योंकि खौफ के बगैर इंसान गुनाहों से बच नहीं सकता। तो ये खौफ लाएंगी कैसे, इसके लिए मेहनत है जी। यही वो बात है जिसको कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, कितना खौफ जो उसका नफ्स ख्वाहिशात से बच जाए, फइन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत है। यानी जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से, हिसाब देने से डरा और उस डर के नतीजे में अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चलने से रोक दिया तो जन्नत उसका ठिकाना है। तो उसके जरिए अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि खौफ बजाते खुद मकसूद नहीं, खौफ बजाते खुद मकसूद नहीं, बल्कि खौफ का नतीजा मकसूद है। बचना, खौफ बजाते खुद मकसूद नहीं, खौफ का नतीजा मकसूद है जी, यानी बचना। वो ये कि अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने का खौफ हो, उसके नतीजे में आए नतीजा, उसके नतीजे में इंसान अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे चलने से रोक दे, ये नतीजा मकसूद है। यहां यही बताया जा रहा है कि वो खौफ जो इंसान को नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलने से रोक दे, यानी गुनाहों से रोक दे। खौफ का ये दर्जा फर्ज है, इसलिए हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो खौफ का ये दर्जा हासिल करे। अगर किसी को खौफ का ये दर्जा हासिल नहीं है तो वो फर्ज का छोड़ने वाला है, खौफ का छोड़ने वाला है, फर्ज का छोड़ने वाला है। तो देखो कितना जरूरी है। तो हम जैसे कुछ फराइज पर आ गए हैं, अभी और भी इन फराइज पर आ जाए। तो याद रखो, खाली खौफ मकसूद नहीं है, खौफ का नतीजा मकसूद है। और वो क्या है कि इंसान उसकी वजह से गुनाहों से बच जाए। इसलिए बाद मर्तबा खाली वसवसा होता है, बस डरता रहता है अंदर अंदर, लेकिन गुनाहों से बच नहीं पाता है। गुनाह होना जैसे पहाड़ का टूट पड़ना, गुनाह होना कैसा है, जैसे पहाड़ का टूट पड़ना। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अगर उनसे शरीयत के खिलाफ कोई काम हो जाए तो उन पर ऐसा गिरा होता है जैसे उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। बर्दीले सालिक हजारा गम बुवत, गर जबागे दिल खलाले कम बुवत। यानी साली के दिल पर हजारों गम तारी हो जाते हैं अगर उसके दिल के बाग में एक खिलाल भी कम हो जाए, यानी थोड़ा सा भी कम हो जाए तो उसके दिल के अंदर हजारों गम तारी हो जाते, यानी कुछ नुकसान हो जाए और एक गुना भी सरजद हो जाए, एक गुना भी हो जाए। और जो शख्स फासिक और फाजिर है उससे अगर गुना हो जाए तो उसकी नजर में ऐसा है जैसे कोई मक्खी उसके नाक पर बैठी और उसने उसको उड़ा दिया और उसको उस गुना की कोई परवाह भी नहीं होती। ये बड़ा खतरनाक मामला है। लिहाजा ये डर कि मैं गुना करके अल्लाह ताला के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा, डर का ये दर्जा फर्ज है। फर्ज उसकी तहसील जरूरी है, अगर हासिल नहीं है तो उसको हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फर्ज का दर्जा भी हासिल है, हासिल है। कैसे कि देखो हम सब नमाज के पाबंद है कि नहीं है, ना? बस तो ये क्यों पाबंद है जरा पूछो। तो वो डर है कि अरे अल्लाह का अजाब होगा। आप सब रोजे के पाबंद है, क्यों पाबंद है? तो वो आप डर की वजह से पाबंद है। तो ये दर्जा भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है, लेकिन इस दर्जे से हम चंद चीजों का तो खौफ आया है लेकिन दूसरी चीजों का भी खौफ लाना है ताकि और आगे बढ़े। इसलिए घबराओ नहीं कि हमें पर ये फर्ज का दर्जा तो हमें मिला ही नहीं है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। तो अब इतना भी दर्जा जिससे हम नमाज पढ़ने, बाजों को तो वो दर्जा नहीं जिससे वो नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, रोजे भी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कोई अमल नहीं हो रहा है। तो उनके पास खौफ का फर्ज का दर्जा हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो ईमान वाले हैं। लेकिन हमें वो दर्जा हासिल हो गया तो थोड़ा सा हासिल हुआ तो वो फर्ज में हम दाखिल हो गए, लेकिन हम उससे नमाजें छूटी थी पढ़ने वाले बन गए, रोजे छूट रहे थे पढ़ने वाले बन गए। अब जो नहीं हुआ है, जैसे अब जो अखलाक हसना है यानी अभी हमारे अंदर तकब्बुर छूटा नहीं है, अब उसको भी छोड़ना है। जैसे गिबत छूटी नहीं उसको भी छोड़ना है, उस पर भी आ जाओ। तो हम नमाज रोजे पर आकर और हज अदा करके हम खुश हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनदार बन गए। दीनदार बने नहीं, अभी मेहनत बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। इसलिए मेहनत करते जाओ, बस यहां तक ही रखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.